आप देखेंगे पेज 199 पे कब्र मुबारक की ज़ियारत के बारे में दईफ और मौदू रिवायात या अहादीस। ऐसी चीज़ें अमूमन हमारे यहाँ बहुत आम हो जाती हैं जिसकी सेहत में बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा शुबा होता है, तो हम यहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ तवज्जो से सुनिएगा कि ये वो चीज़ें हैं कि जो दुरुस्त नहीं, लेकिन इस सोच के साथ आपको पढ़ाई जा रही हैं कि अगर कहीं आप ये रिवायात सुनें तो आपको पता चल जाए कि ये चीज़ है तो सही लेकिन दुरुस्त नहीं। लेकिन इसको याद ना कर लें इस सोच के साथ कि हाँ हाँ ये हमने हज और उम्रे की किताब में पढ़ी थी बात, तो ये सही होगी। बात वाज़े तवज्जो के साथ, क्योंकि बाज़ लोग इसका फ़र्क नहीं कर पाते। यहाँ हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो ज़ुबान ज़द आम तो होती हैं लेकिन दुरुस्त नहीं हैं। पढ़ाने का फ़ायदा क्या है कि अगर आपको कल कहीं ये रिवायत कोई बताए तो आप ये ना सोचें कि ओहो ये हदीस तो हमारी किताब में आई ही नहीं। चलिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे मरने के बाद हज किया फिर मेरी कब्र की ज़ियारत की, इसने गोया मेरी ज़िंदगी में ज़ियारत की। इसे तबरानी, दारकुतनी और बहकी ने रिवायत किया है। अब देख रहे हैं कि इन रिवायात की अरबिक नहीं लिखी गई, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं। हम अरबी की सोच से पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी की ज़ुबान अथर से निकले हुए अल्फाज हैं, तो लिहाजा ये रिवायत जो है ये हदीस मौजू है। तफसील के लिए मुलाहिजा हो सिलसिलातुल हदीस दईफ अवल मौदूआ लिल अल्बानी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 47। ये शख्स भी अल्लाह ताला का एक तोहफा था इस सदी के लिए। पिछली सदी जो 19th में गुजर चुकी, इनका इंतकाल हुआ आज से 10-12 साल पहले। इन्होंने खरे और खोटे को अलग कर दिया, और कहते हैं कि हर एक 100 साल के बाद अल्लाह ताला कोई एक ऐसा इंसान भेजते हैं दुनिया में कि जो दीन के अंदर किए गए इजाफ़ों को ख़त्म कर देता है। तो इनके बारे में ये चीज़ मारूफ है कि पिछली सदियों में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के नाम से मंसूब करके ज़ईफ़ रिवायात कोट कर दी गई थी उसको निकाल दिया इन्होंने। और ये भी एक हफाजत का तरीका होता है कि कोई भी कुरान और हदीस के अंदर इजाफे नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये रिवायत दुरुस्त नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने हज किया और मेरी कब्र की ज़ियारत ना की, इसने मुझ पर ज़ुल्म किया। इसे दैलमी ने रिवायत किया। यह हदीस मौजू है। मौजू क्या होती है? वज़ा की हुई, फैब्रिकेटेड। एक तो ज़ईफ़ रिवायत है ना, वो बेहतर होती है। गरीब रिवायत और भी अच्छी होती है। गरीब और ज़ईफ़ दोनों बेहतर होती हैं मौजू से। मौजू तो ऐसे ही है जैसे कोई मेरे बारे में कोई बात घड़ के जाके बाहर रिसेप्शन पर कह दे, ना मैंने कही ना मैंने सोची, और जाकर रिसेप्शन वालों से कहते हैं कि वो ये कह रही हैं। तो ये वज़ा करना, खुद ही बातें बना लेना। तो आप देखिए, जो शख्स जो लोग ये किताबों में हदीसें पढ़ते हैं सिर्फ हदीस के नाम पे, क्या वो फिर पूरी कोशिश ना करेंगे कि अल्लाह के नबी की कब्र की ज़ियारत करें, चाहे लोगों के पाँव पे कूदें, फलांगें, क्या करें, उनकी बस जाए? वो कहेंगे नहीं जी, हमने ज़ियारत ही नहीं की, हमारा तो हज और उम्रा नहीं हुआ। और कई लोग आके फिर दम देने की फ़िक्रों में नहीं होंगे, सवाल पूछेंगे। ये फ़र्क फ़ायद नुकसान होता है। बातिल इल्म जब आम हो जाता है ना, जैसे मार्केट में कहते हैं कि नक्कालों से होशियार रहिए, क्यों कहते हैं कि अब हमारा ब्रांड लेंगे तो सोच के लीजिएगा, मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जब किसी भी मुल्क में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलावटशुदा मिलती हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि ठीक क्या और गलत क्या है। बिल्कुल इसी तरह जब ऐसा इल्म फैला दिया जाता है कि जिसकी सनद में खराबी हो, तो फिर लोगों को सच्चे और झूठे की तमीज़ भी नहीं रहती। बाद दफ़ा आप कई अच्छी चीज़ें सिर्फ इस शक से छोड़ देते हैं कि शायद ठीक ही नहीं होगी, हालांकि वो प्रोडक्ट ठीक होता है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग सही इल्म, सही अहदीस, कुरान और हदीस को छोड़ देते हैं इस गम के मारे हुए कि ये हमारी फलां बात को सही नहीं कहते। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही और प्योर इल्म लेने और देने वाला बना दे। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने मदीना आकर सवाब की नीयत से मेरी कब्र की ज़ियारत की, क़यामत के दिन मैं इसके हक़ में गवाही दूंगा और सिफारिश भी करूंगा। इसे बहकी ने रिवायत किया। यह हदीस दईफ़ है, यानी ज़ईफ़ है। तफसील के लिए मुलाहिजा ज़ईफ़ुल जामिल जामिउल सगीर लिल अल्बानी जिल्द नंबर 5 हदीस नंबर 5619। तो आप देखिए कि बस जो ज़ईफ़ रिवायतें होती हैं वो बिल्कुल देखने में उनमें कोई कवाहत नहीं होती, कोई गलत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि ज़ईफ़ रिवायत जो है या मौज़ू रिवायत जो वो बड़ी शिरकिया लफ्ज़ों वाली हो या बहुत एग्जैजरेशन। बाज़ दफ़ा वही पैगाम बिल्कुल एक सही हदीस से भी मिल रहा होता है एग्जैक्टली, लेकिन वो उसकी सनद ख़राब है इसलिए हम उसको निकाल देंगे। कोई ऐसी बिसाखी नहीं चाहिए दीन को सीखने के लिए कि जो दुरुस्त चीज़ ना भी हो और उसको ले लिया जाए कि चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा हदीसें जमा हो जाएंगी। थोड़ी हो सही हो वो बेहतर है, ज़्यादा हो और कुछ सही हो और कुछ कम हो इससे। आले ख़त्ताब से एक आदमी रिवायत करता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इरादतन मेरी कब्र की ज़्यारत की वो क़्यामत के दिन मेरे साथ होगा, जिसने मदीना में क़याम किया और इस दौरान आने वाली मुसीबतों पर सब्र किया क़्यामत के दिन इसकी गवाही दूंगा और इसके लिए सिफारिश करूंगा। जो शख्स हरम मक्का या हरम मदीना में से किसी एक में फौत होगा, अल्लाह ताला उसे क़्यामत के दिन अमन दिए गए लोगों के साथ उठाएगा। इसे बहकी ने रिवायत किया। यह हदीस ज़ईफ़ है। तफसील के लिए मुलाहिज़ा मिशकातुल मसाबिक लिलालबानी किताबुल हज हरमुल मदीना हरसल्लाहु ताला फसलु सालिस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक ही साल में मेरी और मेरे बाप यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़्यारत की वो जन्नत में जाएगा। ये कैसे हो सकता है? अब देखिए कि हज़रत इब्राहिम की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत कैसे हो सकती है ना? मज़मून भी बहुत अजीब लग रहा है ना। यदि इस मौजू है तफसील के लिए मुलाहिज़ा हो सिलसिला हदीस व ज़ईफ़ अल मौदू अल अलबानी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 46 यानी 46। यकीन करें कि आप देखेंगे कि अक्सर जो लच्छेदार गुफ्तगू होती है ना, जो बड़ी जोशीली तकरीरें होती हैं और बड़े मजमे इकट्ठे होते हैं, उसमें अमूमन अहादीस में से सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। ये एक आज के दौर का बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे कि सिर्फ इस सोच से कि मेरी बात सुनने के लिए लोग आए और एक माहौल तारी हो जाए, और वाकई बात चीज़ों में बड़ी एग्जैजुरेशन होती हैं, हुरों की बातें, जन्नत की बातें, इस जगह महल उस जगह महल, लेकिन उन रिवायात में ज़ोफ़ होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने हालत इस्लाम में हज किया और मेरी कब्र की ज़्यारत की, जिहाद किया और बैतुल मक़दस में मुझ पर दरूद भेजा, अल्लाह ताला फ़राइज़ में कोताही के बारे में इससे सवाल नहीं करेगा। इसे सखावी ने रिवायत किया। पॉसिबल है ये? आपने तो अपनी कब्र के ऊपर भी ये करने के लिए नहीं कहा कि फ़राइज़ के बारे में नहीं पूछे जाएगा। ये हदीस मौजू है। तफसील के लिए सिलसिला हदीस व ज़ईफ़ अल मौदू अलबानी के जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 4। आप इसकी वहाँ से अगर चाहें तो डिटेल्स पढ़ सकते हैं। कब्र मुबारक की ज़्यारत के मुतालिक वो उमूर जो सुन्नत से साबित नहीं। कब्र मुबारक की ज़्यारत की नियत से मदीना मुनव्वरा का सफ़र करना, मस्जिद नबवी में दाखिल होने के बाद तहय्यतुल मस्जिद अदा किए बग़ैर सीधे कब्र मुबारक पर चले जाना, कब्र मुबारक की तरफ मुँह करके दुआ करना, हसूल बरकत के लिए कब्र मुबारक की जालियों दीवारों दरवाज़ों को छूना, बोसे देना या इसे अपने जिस्म से लगाना, कब्र मुबारक पर खड़े होकर गैर मसनून दरूद, मसलन दरूद ताज, दरूद लखी, दरूद माही, दरूद अकबर, दरूद मुकद्दस और दरूद तंजीना वगैरह पढ़ना। ये मुख्तलिफ़ दरूद हैं जो लोगों ने बना के रखे हुए हैं, जिसको पढ़ते हैं, और मुझे तो समझ नहीं आती कि जिन दरूदों के नाम पाकिस्तानी हैं वो अरबी दरूद कैसे हो सकते हैं। अपनी हाजतें और मुरादें कागज़ पर लिखकर जालियों के अंदर फेंकना। यकीन करें लोग फेंक रहे होते हैं, पैगाम पर्चियाँ लिख लिख के अल्लाह के नबी को भेज रहे होते हैं, और यही हरकतें करके हमने पाकिस्तानियों को बदनाम किया। अल्लाह अकबर। कब्र मुबारक पर कुरान ख्वानी या नात ख्वानी के लिए बैठना कितना आसान था। बैठा देती गवर्नमेंट किसी एक को और बैठ के वो नाते पढ़ता रहता है, लेकिन इससे दीन का कौन सा रुख सामने आता है और इससे फ़ायदा क्या होता। कब्र मुबारक पर बैठकर मुराकबा करना, ये ख़ास इस्तलाह है तसव्वुफ़ के नाम पे, उसका जिक्र किया गया। कब्र पर दुरूद शरीफ के बाद कुरान मजीद की आयत वलवन्नहुम इज़्ज़लमू, ये सूरत निसा में हम पढ़ चुके हैं, जिसका पूरा खुलासा क्या है कि अगर उनसे कोई वो अपने नफ्सों पे जुल्म कर लेते तो आपके पास आते और आपको अल्लाह ताला को गफूर रहीम पाते। ये सूरत या तो अनफाल है या सूरत निसा है, चेक किया जा सकता है। तो ये तिलावत करते हैं लोग जाके कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह कह रहा है कि जिसने भी गुनाह किया जुल्म किए हैं वो आपके पास आए और आपके सामने अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। हालांकि एक ख़ास टेक्स्ट के साथ आयत थी और आप पढ़ चुके हैं अपने सबक में, तो ऐसी आयतों का पढ़ना ये भी दुरुस्त नहीं है। दुरूद सलाम पढ़ने के बाद अश्शफ़ात या रसूलुल्लाही लामान या रसूलुल्लाही अत्तवस्सलु बिका या रसूलुल्लाही बजाही मोहम्मद इश्फिनी या अल्लाह जैसे कलेमात कहना। हजूम के बावजूद दुरूद सलाम पढ़ने के लिए कब्र पर आना ये भी दुरुस्त नहीं है। दुआ करते हुए रसूलुल्लाह को वसीला बनाना, यह अकीदा रखना जिस तरह रसूलुल्लाह अपनी हयात तय्यबा में हमारी गुजारशात सुनते थे, अब भी इसी तरह हमारी गुजारशात सुन रहे हैं। ये अकीदा रखना कि दुरुदुस्सलाम के लिए हाजिर होने वालों के अहवाल आमाल और नियतों को आप जानते हैं। یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوگی. قبر مبارک کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس پلٹنا. مدینہ منورہ جانے والوں کے ذریعے آپ کو سلام بھجوانا. کتنا معروف ہے ہمارے کلچر میں میرا سلام کہنا. اور وہ ایک درود بھی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا نا کہ اے زائر مکہ اے زائر طیبہ جا جا کے میرا سلام کہنا. اور پتہ نہیں پنکھوں اور جالیوں اور کس کس کو چوم کے سلام کہنا. تو یہ بڑا معروف ہے ہمارے ہاں جبکہ یہ درست نہیں ہے. رجب شعبان یا رمضان میں قبر مبارک کی زیارت کا خصوصی اہتمام کرنا. قبر مبارک پر اعتکاف کرنا یا قبر کا طواف کرنا. قبر مبارک کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر بے حس و حرکت کھڑے ہونا. بارش کے بعد قبر مبارک کے سبز گنبد سے گرنے والے قطروں کو تبرک کے طور پر جمع کرنا. آپ کو پتا کہ جو اوپر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بیٹھیں اور ان کی گندگی بھی ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ پانی کے ساتھ نیچے بہتا ہے اور بعض لوگ اس کو مبارک سمجھتے ہوئے جمع کر لیتے ہیں. قبر مبارک کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ قبلہ سامنے ہے اور قبر سائڈ پہ ہے.